कई रविवार पहले हम भगवान के नाम के प्रति जो अपराध होते हैं, नाम अपराध, उनके बारे में चर्चा करते आए हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान का नाम ही इस कलयुग में हमें भगवत साक्षात्कार कराने का मार्ग है। भगवान के नाम के अलावा इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। केवल भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से ही हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त हो सकता है। कलयुग अधर्म का और कष्ट का सागर है। यहाँ पे किसी को तपस्या, ज्ञान, भक्ति करने की इच्छा नहीं है, परंतु भगवान ने कलयुग के पतित जीवों के ऊपर असीम कृपा करके उनको खुद का नाम दिया है, जिसका सहारा लेकर, जिसका उच्चारण करके यहाँ के पापी पतित जीव भी भगवत धाम में वापस जा सके। तो कितना आसान है ये मार्ग, कितना सुलभ है। केवल भगवान का नाम लो और भगवत धाम लौट जाओ, बस इतना सरल। परंतु समस्या एक है, वो क्या है? समाधान तो बहुत सरल है, लेकिन हम सरल नहीं हैं। इसलिए सरल उपाय लेने के लिए हमें बहुत कठिनाई होती है। हमारे आसक्तियां, हमारे मन के अलग अलग तरह के भ्रम, ये हमको अपराध करने में मजबूर करते हैं। और जब भगवान के नाम के प्रति हम अपराध करते हैं तो फिर कठिनाइयां हमारी बढ़ जाती हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि जो व्यक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो अगर कोई पापों से मुक्त होना चाहता है तो वो भगवान कृष्ण के शरण में जा सकता है, फिर पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपराध किया तो उसके लिए क्या मार्ग है? उसके लिए मार्ग है कि वो भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय ले, नाम के शरण में जाए। तो फिर अगर अनायास उसने कोई भगवान कृष्ण के प्रति भी कोई अपराध किया हो, कृष्ण के नाम का आश्रय लेने से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति जो अपराध हुए हैं वो भी नष्ट हो सकते हैं। तो समस्या ये है कि अब हमने अगर भगवान के नाम के प्रति अपराध किया तो क्या? क्योंकि ये हमारा स्वभाव ही हो गया है अपराध करना। इस भौतिक जगत में रहकर हम कई तरह के अपराध करते हैं, भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के सेवा के प्रति, भगवान के अर्चा विग्रह के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, सारे जीवों के प्रति, कितने सारे अपराध हम करते बैठते हैं जाने अनजाने में। तो भगवान के नाम के प्रति अपराध करने से बहुत कठिनाई हो जाती है। फिर क्या मार्ग है हमारे लिए? अगर भगवान के नाम के प्रति अपराध करते करते कोई अगर भगवत धाम पहुंचना चाहता है तो यह संभव नहीं है। जब हम भगवान के नाम के प्रति अपराध करते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए बंधन या अड़चन आ जाते हैं। हम भगवान के नाम के प्रति रस या आसक्ति का अनुभव नहीं कर सकते हैं, भगवत प्रेम हमें नहीं मिलता है, भक्ति हमारी सुखी सुखी लगती है। मनुष्य का दिमाग ऐसा है, पशु ऐसे नहीं होते। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड में जा रहे थे, वृंदावन की ओर जाते जाते जब वो उस वन से गुजर रहे थे तो नाम संकीर्तन करते करते उन्होंने वहां के सारे पशु प्राणी पक्षियों को भी संकीर्तन में शामिल कराया। वो सब कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिए, महाप्रभु के संग हाथ ऊपर करके नृत्य करने लगे। शेर हिरण सब साथ में गले लगाकर कीर्तन कर रहे हैं, जबकि दोनों स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन नाम संकीर्तन के प्रभाव से दोनों आलिंगन करके प्रेम के आंसू उनके आंखों से बहते बहाते बहाते वो कीर्तन कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में अपराध की भावना नहीं है। लेकिन मनुष्य समाज में इसके बारे में सोचना आवश्यक है। भगवान के नाम के प्रति हमने देखा है कि 10 नाम अपराध हैं। इनमें से कितने नाम अपराधों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं? 8। आपको बहुत अच्छी स्मृति शक्ति है सबकी, कई रविवार पहले ये बातचीत हो गई थी। तो 8 नाम अपराधों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, अब रहे अंतिम 2, 9वां और 10वां। तो आइए हम सुनने का प्रयास करते हैं ये 2 नाम अपराध कौन से हैं। 9वां नाम अपराध, अशद्धाने विमुखे पि अश्रिण्वती यश्चोपदेश शिव नामापराध। किसी एक ऐसे व्यक्ति को भगवान के नाम के महिमा का वर्णन करना जो कि अशद्धाने विमुखे, जो कि बहिर्मुख है, जो कि भगवान को पीठ दिखा रहा है, जिसके मन में भगवान और भगवान के नाम में कोई श्रद्धा नहीं है, अशद्धाने विमुख है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम भगवान के नाम की महिमा सुनाएंगे तो ये एक अपराध माना जाता है। खास करके ऐसे लोगों के लिए जिनको बिल्कुल रुचि नहीं है इस विषय में, जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम जबरदस्ती इनको सुनाने लगते हैं, जिनको वास्तव में न तो कोई ज्ञान है, न कोई नम्रता है, न कोई वैष्णवों के प्रति या भगवान के प्रति कोई आदर की भावना है, ऐसे लोगों को हमें नहीं सुनाना चाहिए भगवान का नाम। भगवान का नाम सुना सकते हैं, लेकिन नाम के महिमा जो है इसके बारे में नहीं सुनाना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो लोग अश्रद्धालु हैं वो अज्ञान के कारण अश्रद्धालु हैं, और अज्ञान की वजह से उनके मन में द्वेष, अहंकार इत्यादि उत्पन्न हो जाता है। और साधारण तौर से देखा जाता है कि कई लोग भगवान से द्वेष करते हैं। अगर आप उनको भगवान की महिमा के बारे में कुछ सुनाना चाहेंगे उनको गुस्सा आता है। आपको अनुभव है, आपने अगर किसी को प्रचार करने का प्रयास किया हो, कृष्ण का नाम सुनते ही गुस्सा आता है उनको, कृष्ण उन्होंने ऐसा किया वैसे किया। जब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु के बारे में उपदेश देने का प्रयास किया तो हिरण्यकश्यप खुश होकर और कहो नहीं कहने लगे। हिरण्यकश्यप को आया गुस्सा। पहली बार तो उनको उन्हें लगा कि विष्णु के जासूस आकर मेरे बच्चे का मन खराब कर रहे हैं, तो षंड अमर को उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि आज से खबरदार, जरा सावधान रहना, कोई जासूस गुरुकुल में नहीं आए। दूसरी बार जब वही हुआ तो उनको बहुत गुस्सा आया, अपनी गोदी से प्रहलाद को निकाल दिया, हटा दिया, धक्का मार के निकाल दिया। और जब प्रहलाद ने विष्णु के बारे में प्रचार करना बंद नहीं किया और हिरण्यकश्यप ने इतना सब प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, तो हिरण्यकश्यप के मन में नाना प्रकार की भावनाएं उमड़ रही थीं। एक था भय, दूसरा था भ्रम कि हो क्या रहा है, मैं इतना सब करने का प्रयास कर रहा हूं और ये बच्चा मर ही नहीं रहा है, हो सकता है कि यही बच्चा मेरे मृत्यु का कारण बन जाए। और आगे चल के भी जब प्रहलाद विष्णु के बारे में कहते गए तो हिरण्यकश्यप ने क्या कहा, अरे विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या रखा है विष्णु, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, इस खंभे में है? क्योंकि उन्होंने देखा था कि प्रहलाद हाथ जोड़कर केवल उस खंभे की ओर देख रहे हैं, क्योंकि इस खंभे के अंदर नरसिंह देव प्रकट थे। केवल प्रहलाद देख रहे थे, हिरण्यकश्यप को पता नहीं था कि प्रहलाद क्या देख रहा है। नरसिंह देव भगवान अंदर खड़े थे, प्रहलाद हाथ जोड़कर उनको देख रहे थे बड़े प्रेम की दृष्टि से। हिरण्यकश्यप ने सोचा, ये क्या खंभे की ओर देख रहा है मेरा बच्चा, क्या तुम्हारा विष्णु खंभे में है? तो फिर प्रहलाद ने कहा, हाँ मेरा भगवान मेरे प्रभु तो सब जगह है। इसका मतलब है कि जो अश्रद्धालु लोग होते हैं, ज्यादा उनको हम भगवान की महिमा का वर्णन करने जाते हैं तो उनको ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चाणक्य पंडित भी बताते हैं, किसी मूर्ख व्यक्ति को अच्छे उपदेश दे दो उसको गुस्सा आता है, इसलिए कभी कभी मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना अच्छा है। नहीं तो मूर्खों की संगत में कहीं हमारी बुद्धि न भ्रष्ट हो जाए। तो इस तरह से जब वो लोग अपराध करने बैठते हैं भगवान के नाम के प्रति, हम भी उस अपराध में भागीदारी हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, उसका फल हमें भी भुगतना पड़ता है। हमारी संस्था में एक सन्यासी हैं भक्ति तीर्थ स्वामी, वो कई साल पहले घटना बता रहे थे, इसको हम सुनाना पसंद करते हैं। वो बता रहे थे कि किस तरह से वो पुस्तक वितरण करते थे। वो पहले जाते थे किसी के पास, खास करके कोई बड़ा आदमी है, और सबसे पहले फटाक से वो भगवान कृष्ण का सुंदर चित्र सामने खोल कर रख देते थे एक क्षण में, और तुरंत उनकी आंखों के सामने रख देते थे, और उनके चेहरे पे क्या दिखाई पड़ रहा है वो गौर से देखते थे। कई लोगों की आंखें बड़े हो जाती थी, अच्छा बहुत सुंदर है, और इस तरह से प्रशंसा करते थे। और कोई लोग उनको उनकी आंखें भी बड़े हो जाती थी, गुस्से की आंखें, ले जाओ क्या क्या है मेरे सामने से ले जाओ। तो फिर उस समय वो समझते थे कि किनके साथ में समय बिताना चाहिए, किनके साथ नहीं बिताना चाहिए। हमारे भक्तों का अनुभव है कि जब वो पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, कई लोग समय बर्बाद करते हैं, बिठाते हैं, नाना प्रकार के सवाल करते हैं, केवल समय बर्बाद करते हैं, कोई रुचि नहीं है उनको, उनको कोई मनोरंजन चाहिए इसलिए बिठा लेते हैं भक्त को, और फिर नाना प्रकार के फिजूल की बातें करते हैं, कोई न कोई जानबूझ के प्रश्न करते हैं, हालांकि उनको कोई सुनने की इच्छा नहीं है। तो इस तरह से ऐसे लोगों के साथ समय बिताना कोई फायदे की बात नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़े रुचि दिखा रहे हैं, थोड़ी एक प्रकार का झुकाव दिखा रहे हैं, उनको बताने में थोड़ा फायदा है। अगर हमने ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा भगवान की महिमा का, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करना आरंभ किया, तो हो सकता है वो ज्यादा ऐसे बोलने लगे जिससे कि वो ज्यादा अपराध कर बैठे, इसलिए नहीं बताते हैं। जिन लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, पाप की पूंजी की वजह से वो भगवान की महिमा को समझ नहीं सकते, वो एक अड़चन बन जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, येषां त्वन्द्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते मोहद्वन्द निर्मुक्ता भजन्ते इमां दृढव्रताः। जब तक व्यक्ति के पाप क्षीण नहीं हो जाते हैं और उसकी सुकृति की पूंजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ नहीं जाती है, तब तक वो दृढ़ता से भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए कोई उद्धार का कोई मार्ग है भी या नहीं? हम उनको भूल जाएं तो उनका उद्धार कैसे हो सकता है? आजकल ऐसे श्रद्धालु लोग कितने मिलते हैं? बहुत कम। गया वो जमाना जब लोग मंदिर में आते थे बड़े भक्ति भावना से कि हम भगवान को जानना चाहते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है वो हम बड़े श्रद्धा से स्वीकार करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग बिन बुलाए जो मंदिर में आते हैं, केवल अपना शॉपिंग लिस्ट लेकर आते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या तो पूरी कोई पीड़ित अवस्था में आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो फिर क्या किया जाए? लोगों का उद्धार होगा कैसे? तो शास्त्र बताते हैं, नाम संकीर्तन और सरल से सरल भगवद गीता का उपदेश और कृष्ण प्रसाद। साधारण जनता के लिए नाम संकीर्तन और कृष्ण प्रसाद का वितरण, ये दो चीजें बहुत लाभदायक है। इनको करने से लोगों के पाप नष्ट हो जाएंगे और जो सुकृति धीरे धीरे से बढ़ जाएगी। साथ साथ में जो दो शब्द भगवद गीता के सुनना चाहते हैं उनको हम सुना सकते हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा शरीर को त्यागती है, इसको मृत्यु कहते हैं। जन्म मृत्यु का चक्कर क्या है, ऐसी सब सरल बातें हम उनको बता सकते हैं। तो ऐसे दिव्य ज्ञान का श्रवण करने से धीरे 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 से उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान का नाम लेने से, भगवान का प्रसाद लेने से हृदय शुद्ध हो जाता है और फिर वो भगवान की महिमा को सुनने के लिए, उनके नाम की महिमा को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तरीका है। डायरेक्ट नए आदमी को जाकर आप बताने लगे कि भगवान के नाम से क्या क्या होगा तो विश्वास नहीं करेंगे। चैतन्य लीला में एक छोटी सी कहानी बताई गई है कि जब चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन किया करते थे श्रीवास ठाकुर के घर में, तो सारे दरवाजे बंद किया करते थे, क्योंकि वहां पड़ोस में जो लोग रहते थे वो सब नास्तिक लोग थे, अश्रद्धालु लोग थे, और वो बिल्कुल समझते नहीं थे कि श्रीवास ठाकुर के घर में चल क्या रहा है। वो तो सोचते थे कि ये सारे लोग तो पागल हो गए हैं और ये लोग तो पाप कर रहे हैं, रात भर ऐसा जोर आवाज करके वो तो भगवान विष्णु को जगा रहे हैं अपनी निद्रा से, तो इनको तो पाप लगेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को यहां अंदर आने की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से सारे भक्त बड़े सावधान रहते थे। सभी लोग जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो इसलिए किसी को भी वो लाते नहीं थे बाहर से। हालांकि बहुत सारे लोग आने के इच्छुक थे, लेकिन एक ब्रह्मचारी था। भक्त तो था नहीं, परंतु बड़े कड़क ब्रह्मचारी नियम का पालन करता था। स्वभाव से भी बड़ा नम्र सौम्य था, भक्तों के प्रति आदर भावना रखता था, चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी आदर भावना रखता था, काफी तपस्या करता था, केवल दूध का पान करके जीता था, अनाज नहीं खाता था, कड़क ब्रह्मचारी। और ये बार बार श्रीवास ठाकुर के पास आता और कहता कि मुझे भी चैतन्य महाप्रभु का नृत्य, उनका संकीर्तन देखना है, उनके संकीर्तन में शामिल होना है। तो हर बार श्रीवास ठाकुर सोचते चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो जाएंगे, मैं अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन एक दिन उस ब्रह्मचारी के बार बार कहने पर श्रीवास ठाकुर ने कहा, ठीक है, तुम इतने अच्छे नम्र सुशील ब्रह्मचारी हो, कड़कता से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, इतने सालों से इतनी तपस्या कर रहे हो, तो ठीक है आ जाओ, लेकिन वहां पीछे छुप जाना। फिर वो ब्रह्मचारी अंदर आया और श्रीवास ठाकुर के घर में जहां संकीर्तन हुआ करता था, एक दूसरे कमरे में जाकर वहां खंभे के पीछे छुप गया। वहां चैतन्य महाप्रभु अन्य भक्तों के संग आए, बहुत धूमधाम से संकीर्तन आरंभ हुआ, सारे भक्त भाव विभोर हो गए, चैतन्य महाप्रभु भी बड़े उत्साह से कीर्तन कर रहे थे, अच्छी तरह से जानते थे कि श्रीवास ठाकुर ने क्या किया है। परंतु बीच में अचानक उन्होंने संकीर्तन रोक दिया और कहने लगे, यहां ऐसा कोई व्यक्ति अवश्य है जिसको यहां नहीं होना चाहिए। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, श्रीवास ठाकुर को डर लगा, इसलिए सोचा कि अभी तो बिल्कुल झूठ तो नहीं बोल सकते, सीधे उन्होंने सच बता दिया, कहा कि हां प्रभु, ये ब्रह्मचारी है जो दूध पीता है केवल और कुछ नहीं खाता है, बड़े तपस्या करने वाला ब्रह्मचारी है, हमने उसे अनुमति दी है। तो चैतन्य महाप्रभु को आया बड़ा गुस्सा, उन्होंने कहा, क्या दूध पीने से मेरी भक्ति मिलेगी, क्या तुम सोचते हो कि जो आदमी केवल तपस्या करता है वो मुझे प्राप्त कर सकता है? गजेंद्र ने क्या तपस्या की थी? वो तो हाथी था। हनुमान और वानर सेना ने क्या तपस्या की थी? वो तो वानर थे। वृंदावन के गोपियों ने क्या तपस्या की थी? वो तो केवल साधारण गांव के महिलाएं थी, गोपियां थी। तो मुझे केवल भक्ति करने से प्राप्त किया जा सकता है, केवल तपस्या करके दूध के ऊपर जीना, इससे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। बाहर निकाल दो उस ब्रह्मचारी को। तो कांपते हुए चैतन्य महाप्रभु के वचनों को सुनते कांपने लगा वो ब्रह्मचारी, बाहर आ गया, दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु के चरणों में क्षमा याचना की और वहां से बाहर निकलते गया। उस समय महाप्रभु ने देखा कि इसकी भावना अनुकूल है, सही भावना लेकर आया है, इसके मन में वाकई कोई घमंड नहीं है। हालांकि ये तपस्या कर रहा है, लेकिन इस वक्त इसके नम्र व्यवहार के द्वारा ये अब मेरे संकीर्तन में शामिल होने के लिए योग्य हो गया है। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को, ब्रह्मचारी को वापस बुलवाया और उसके सर के ऊपर अपने चरण कमल प्रदान किए। सारे भक्तों ने हरि बोल कह के अभिनंदन किया उस भक्त का कि उसका जीवन सफल हो गया था। इसका मतलब है कि हर चीज के लिए योग्यता चाहिए। वो व्यक्ति भक्त नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वो महाप्रभु और भक्तों के सामने नम्रता से पेश आया, इसलिए वो योग्यता उसे प्राप्त हो गई, जिससे कि वो महाप्रभु के अंदर अंदरूनी दल में वो आ गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कृष्ण भक्ति के जो ऊंचे विषय रहते हैं या जो नाम की महिमा रहती है, वो केवल वो लोग सुनने के लिए योग्य हैं जिनके मन में श्रद्धा है। तो अगर किसी ने ये नाम अपराध किया है, किसी ने अश्रद्धालु लोगों को जाकर बार बार कृष्ण नाम की महिमा का वर्णन किया है, तो इसके लिए प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो उसे भक्तों के संग में आकर हृदय से प्रायश्चित की भावना उसकी होनी चाहिए कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, और उसे नाम तत्व सुनते रहना चाहिए, हृदय से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपको स्मरण होगा कि ये जो पश्चाताप की भावना है हृदय में, ये सारे 10 अपराधों के लिए यही एक प्रायश्चित है। जो व्यक्ति ऐसे पश्चाताप की भावना रखेगा अपने हृदय में, वो बहुत ही जल्दी इस अपराध से मुक्त हो सकता है। तो ये है 9वां अपराध कि हमें किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल साधारण नाम संकीर्तन में उसे भाग कराना चाहिए, उसे कृष्ण प्रसाद देना चाहिए और सरल जो गीता का दर्शन है, फिलॉसफी है, वो उसे देना चाहिए। अब यह है 10वां नाम अपराध। 10वां नाम अपराध है श्रुत्वापि नाम माहात्म्यम यह प्रीति रहितोद्धम अहम ममादि परमो नामनि सोप्य अपराध कृत। श्रुत्वा अपि नाम महात्म्यम। श्रुत्वा अपि मतलब अगर कोई सुनता भी है, क्या सुनता है? नाम महात्म्यम, भगवान के नाम के महिमा को सुनने के बाद भी यह प्रीति रहिता, उसके मन में प्रीति या श्रद्धा भगवान के नाम के प्रति जागृत नहीं होती है, तो क्या है? अधम है, वो अधम है, वो पतित व्यक्ति है। अहम ममादि परमो नामनि सो अपि अपराध कृत। और साथ साथ अहम और मम, इन दो चीजों का शिकार हो जाता है। अहम ये अहमता, मैं ये मैंपन, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और मम मेरा, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये कुटुंब मेरा है, ये धन मेरा है। जनस्य मोहोयम अहम ममेति, ये अहम और मम, अहमता और ममता, ये शारीरिक ये भावना या चेतना का लक्षण है, देहात्म बुद्धि। तो जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है और वो अहंता और ममता में अटक जाता है, उसके मन में भगवान के नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न होना बहुत कठिन है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् इदृशम् इहाजनिनानुरागः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अनंत नाम हैं जैसे कृष्ण और गोविंद, और हर एक नाम में आपने आपकी अनंत शक्ति प्रदान की हुई है। आप में और आपके नाम में कोई अंतर नहीं है, परंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम के प्रति मेरे मन में अनुराग या रुचि जागृत नहीं हुई है। तो ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे मन में ये अहमता और ममता है। ये एक प्रकार की असुरी वृत्ति है। जैसा कि भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी। वो कहते हैं, आदमी सोचता है असुरी प्रवृत्ति वाला कि मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही भोगता हूं, और इस तरह से वो अपने भ्रम में पड़ जाता है, अपनी अहमता को और ममता को बढ़ाने जाता है। और ऐसी अवस्था में भगवान के नाम के प्रति आकर्षण उसके हृदय में नहीं हो सकता है। ये संसार की जो आसक्ति है बहुत बलवान है, और आदमी को भगवान के नाम से खींचकर संसार में प्रपंच में फिर से ले आती है। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उनके जीवन में क्या बीतता है एक छोटी सी लीला से हम जान सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन किया करते थे, तो एक बार हुआ ये कि श्रीवास ठाकुर का जो छोटा लड़का था वो बीमार था और काफी गंभीर अवस्था में था। वहां पे अंदर सारे घर की महिलाएं उस लड़के का देखभाल कर रही थीं। बाहर चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ में नाम संकीर्तन कर रहे थे, बिल्कुल मग्न थे नाम संकीर्तन में, और अचानक उस लड़के की मृत्यु हो गई। श्रीवास ठाकुर को वहां बुलाया गया। श्रीवास ठाकुर वहां पर आए, जोर जोर से घर की महिलाएं जो थीं वो रो रही थीं। श्रीवास ठाकुर ने उनसे कहा, अरे चुप रहो चुप रहो, तुम्हारे जोर जोर रोने से महाप्रभु डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका जो ध्यान है भंग हो जाएगा, वो नाम संकीर्तन में अपने कीर्तन में नृत्य में मग्न है, इसलिए आपके रोने से गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप और ज्यादा रोगे इस तरह से तो मैं गंगा में जाके अपने प्राण को त्याग दूंगा। फिर सारे महिलाओं ने रोना बंद कर दिया, लेकिन वहां श्रीवास ठाकुर का लड़का प्राण त्यागा हुआ था, केवल उनका शव वहां पे था। तो श्रीवास ठाकुर ने क्या किया, सीधे वापस कीर्तन में गए और नृत्य करना शुरू कर दिया चैतन्य महाप्रभु के साथ में। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान कृष्ण है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कीर्तन रोका और कहने लगे, अरे श्रीवास, लगता है कि कुछ ऐसी अशुभ घटना हुई है घर के अंदर, क्या बात है, क्या हुआ है? फिर अन्य भक्तों ने बताया कि प्रभु, श्रीवास ठाकुर का लड़का, उसका देहांत हो गया, अभी ये घटना हुए 2.5 घंटे हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि अरे 2.5 घंटे बीत गए लड़के के मृत्यु होने से, और ये श्रीवास ठाकुर अभी यहां कीर्तन कर रहे हैं हमारे साथ में। तो ऐसे भक्त जिसके हृदय में नाम के प्रति इतनी रुचि है और जो हमसे इतना लगाव रखता है, ऐसे शुद्ध भक्त को हम त्याग के कैसे चले जा सकते हैं? यह भगवान चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के पहले की बात थी। तो भक्तों के मन में संशय आया कि क्या इसका मतलब है कि महाप्रभु छोड़ के जाने वाले हैं क्या हमें? लेकिन फिर भी खैर, समस्या तो अब ये थी कि श्रीवास ठाकुर के लड़के की मृत्यु हो गई थी, तो अब क्या किया जाए? तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चलो चलो जाते हैं लड़के के पास। और लड़के के पास वहां पर गए और उन्होंने देखा कि लड़के का शरीर वहां पर पड़ा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस बच्चे के वक्षस्थल के ऊपर हाथ रखा और कहा कि क्यों सोए हो, उठो। और फिर वो बच्चा, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि महाप्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, जब बच्चे की मृत्यु हो गई तो जाके वहां कह रहे हैं कि बोलो उठो। पहले तो आश्चर्यचकित हो गए थे, लेकिन अचानक अब बच्चा बोलने लगा और सारे भक्त और भी आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए पूरी तरह से। और फिर बच्चा बोलने लगा कि हे प्रभु, आपकी लीला को कौन जान सकता है, आपके इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं पिछले जन्म में कहीं और था और मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे ये शरीर मिला था और उसी प्रारब्ध के अनुसार मुझे ये शरीर त्यागना पड़ रहा है, मुझे अगले शरीर में जाना है। तो अब जाते जाते मेरी एक ही इच्छा है कि आप हमेशा मुझे आपके चरण कमलों में रखिए, ये मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं आपको कभी भूलू नहीं, बस ये मैं ही चाहता हूं। बाकी कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है, कौन किसका भाई बहन, ये संसार के संबंधों का क्या मतलब है। इस तरह से बच्चा बोलने लगा और फिर शांत पड़ गया। फिर सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करने लगे और बड़े आश्चर्यचकित होकर इस घटना के बारे में बातचीत करने लगे। उधर समय बीतते जा रहा था। फिर उस लड़के के शरीर को स्मशान भूमि ले गए, चैतन्य महाप्रभु भी खुद थे, संकीर्तन करते करते गए, अंतिम क्रियाएं अंत्येष्टि क्रियाएं सब किए और फिर उनका संकीर्तन का कार्य जारी रहा। तो हम देख सकते हैं कि श्रीवास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त ये ममता और अहमता की भावना से कितने परे थे कि उनको फर्क ही नहीं पड़ा। वो सोच रहे थे कि भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के नाम संकीर्तन में अड़चन नहीं लाना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे कुटुंब के सदस्य आते हैं और जाते हैं, मृत्यु आएगी, दूसरा जन्म होगा और ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलेगा, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जिस व्यक्ति को भगवान के नाम में रुचि जागृत करानी है, उसको इन भौतिक कलमशों को त्यागना होगा। भगवान का नाम लेने से भौतिक आसक्तियां कट जाती हैं। जब तक भौतिक आसक्तियां कटती नहीं है, भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो फिर कहां से शुरुआत करें? भक्तों के संग से। जब हम केवल भक्तों के प्रिय हो जाते हैं, भक्तों से कुछ संबंध जोड़ लेते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, जिससे कि हमारे हृदय के अंदर जो भौतिक आसक्तियां हैं वो कम हो जाती हैं, जिससे कि हम भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। इसके बारे में भी एक चैतन्य महाप्रभु की लीला है। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में निवास किया करते थे, तो अलग अलग भक्तों के घर में प्रसाद का सेवन करने के लिए जाते थे। तो एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको बुलाया प्रसाद के लिए और वहां पर खुशी से गए महाप्रभु। वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी ने बहुत सारे पदार्थ बनाए थे और इतनी बड़ी मात्रा में कि चैतन्य महाप्रभु इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहा कि अगर 100 लोगों ने 10 दिन से भी पकाया होगा तो इतना सब नहीं बनाया था होगा, लेकिन आप दोनों ने केवल 6 घंटे में इतना सब बना दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे कि जिस व्यक्ति की कृपा से यह हुआ है, वही व्यक्ति अब खाने वाले हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो कृपया आप इसे ग्रहण कीजिए। महाप्रभु ने कहा कि मैं इतना सब भोजन कैसे खा सकता हूं, ये तो 10 आदमी के लिए भी ज्यादा हो जाएगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि जब आप वहां मंदिर के अंदर रोज 56 भोग खा सकते हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं खा सकते थोड़ा सा भोजन? तो भगवान के भक्त जो होते हैं हमेशा भगवान से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और भगवान को हमेशा हरा डालते हैं तर्क में। भगवान कुछ कहते हैं तो भक्त के पास इच्छे इससे कोई इच्छे तुराई की उत्तर रहती है। तो फिर महाप्रभु बैठे, प्रसाद लेना आरंभ किया। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य के लड़की का नाम था शाठी और शाठी के पति का नाम था अमोघ। अब ये अमोघ जो है वो ब्राह्मण तो था लेकिन भगवान का भक्त नहीं था और उसके हृदय में संशय भावना हमेशा रहा करती थी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो बड़े सतर्क थे, हमेशा दरवाजे की ओर उनकी नजर जा रही थी और वहां से हमेशा वो देखते थे, लाठी हाथ में थी उनकी, कहीं अमोघा अचानक चले ना आए और कुछ उल्टी बातें कह न डाले। लेकिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की सेवा में मग्न थे, इधर उधर कुछ लाने में गए, तो अमोघा ने मौका देख लिया और जल्दी से अंदर चले आया कमरे में और उसने देखा, अरे जो निंदक व्यक्ति होता, निंदा करने के लिए जिसकी आदत होती है, वो कोई ना कोई कारण हमेशा ढूंढता है। तो उन्होंने कहा, अरे देखो तो सही, इतना सारा भोजन यहाँ है, ये तो 10 आदमी के लिए भी ज्यादा है और ये एक सन्यासी इतना भोजन ले रहे हैं। तो तब तक सार्वभौम भट्टाचार्य अंदर आए, देखा कि अरे कंबख्त आ गया अंदर और ये बोल रहा है, लाठी उठाई और उसका पीछा करने लगा। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य बेचारे बूढ़े थे और अमोघा जवान था, तो अमोघा तो तेजी से भाग के गया अपनी जान बचाने के लिए। उधर चैतन्य महाप्रभु के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य आए, बड़े दुखी हो गए और अपना सर पीटने लगे, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में बहुत क्षमा याचना करने लगे। और जब सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी को जब पता चला तो वो अपना वक्षस्थल पीटने लगी, कहने लगी, मेरी बच्ची जो है विधवा हो जाए, यही अच्छा है, हमारे घर में भगवान की निंदा करने वाला आदमी आया, ये हमारे सारे कुल के ऊपर एक कलंक आ गया, हमें नहीं चाहिए ऐसे दामाद। और नाना प्रकार के बुरे शब्द सार्वभौम भट्टाचार्य अपने दामाद को कहने लगे। इसको सुनकर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और कहने लगे, कोई बात नहीं, अमोघा तो बच्चा है, बच्चा तो था नहीं लेकिन उम्र से जवान था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहते थे। और कहने लगे, वैसे भी जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है ना, इतना सब भोजन ये तो 10 आदमियों के लिए है, तो कोई बात नहीं है। उधर अमोघा दूर चला गया, घर में वापस लौट के नहीं आया, रात को कहीं और रह गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद लिया, सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत सांत्वना दी, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य मान नहीं पाए, रात भर बड़े उदास थे, सोच रहे थे या तो मैं मेरे दामाद की हत्या कर दूं या मैं खुद अपनी हत्या कर दूं। लेकिन फिर सोचने लगे, नहीं, दोनों पाप है, दोनों ब्रह्म हत्या है, इसलिए ये उचित नहीं है, लेकिन अगर भगवान ही कुछ करे उसके साथ तो फिर मैं इस अपराध से मुक्त हो सकता हूं, क्योंकि मेरे घर में भगवान के चरण कमलों में इतना बड़ा अपराध हुआ। तो जब सुबह हुई तो सार्वभौम भट्टाचार्य को खबर मिली कि अमोघा को रात में एक बहुत भयंकर बीमारी हो गई है और उसकी अवस्था काफी गंभीर है, मृत्यु के शैया पर लेटा हुआ है। सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा आनंद हुआ कौन ऐसे आदमी है जिसको अपने दामाद के गंभीर बीमारी की खबर सुनकर आनंद होता है। सोच लगा कि देखो, हर दुष्ट आदमी को अपने कर्म का फल मिलता है। और दोनों पति पत्नी बड़े खुश हो गए कि ठीक है, चलो पाप से कम मुक्त हो जाएगा। जब चैतन्य महाप्रभु को खबर दी गोपीनाथ आचार्य ने, तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, सीधे दौड़ते हुए वहां अमोघा के कमरे में गए और अमोघा के वक्षस्थल पे अपने कर कमल रखे और कहने लगे, अरे अमोघ, तुम्हारे हृदय में इतना द्वेष, तुम तो ब्राह्मण हो ब्राह्मण का हृदय तो शुद्ध होना चाहिए। ब्राह्मण का हृदय जो है वो भगवान के लिए एक निवास स्थान होना चाहिए। जहां हृदय में गंदगी होती है वहां भगवान कैसे निवास कर सकते हैं। वास्तव में ये कितनी अच्छी बात है, क्या हम किसी अंदर किसी गंदे घर में रहना पसंद करेंगे? अगर हमारे घर में बहुत गंदगी हो, चूहे कॉकरोच बहुत धूल, 5 साल से कोई धुलाई नहीं सफाई हुई नहीं है, हम क्या वहां पर रहना पसंद करेंगे? और अगर कोई मेहमान हमारे घर में आएगा ऐसी अवस्था में तो वो क्या सोचेगा, दोबारा नहीं आएगा वो। तो हमारा हृदय जो है वो भी भगवान के लिए एक निवास स्थान होना चाहिए और है भी। लेकिन जब हमारे हृदय में इस तरह के गलत भावनाएं रहती हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये द्वेषी हृदय में भगवान निवास करना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि अमोघ त्याग दो इस द्वेष भावना को, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। और इस तरह से तुम्हारे हृदय में जो भी भौतिक आसक्तियां हैं उनको भी काट दो और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करो। बोलो हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस समय अमोघ की बीमारी तुरंत चली गई और उठा और उठ के पागल की तरह हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगा। कृष्ण नाम का उच्चारण करते कभी नाचता कभी कूदता कभी रोता कभी हंसता, सारे भक्तों ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए सब लोग कि कहां वो द्वेषी अमोघा जो हमेशा भक्तों की निंदा करता था, यहां तक कि भगवान की भी निंदा करता था, चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने नहीं छोड़ा, आज ये भाव विभोर होकर प्रेमावेश में आकर नाम संकीर्तन कर रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कंठ गदगद हो वाक्यों से रुद्ध हो गया है, ये चमत्कार कैसे हो गया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये बात सुनी तो वो महाप्रभु के पास आए कि हे प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, इसको मर जाना चाहिए था, मेरे घर में आके उसने आपके चरणों के प्रति इतना बड़ा अपराध किया। तो महाप्रभु कहने लगे कि अरे सार्वभौमा अपने आप को संभाल लो, आखिर ये तो है तरुण बच्चा है और आप उसके पिता तुल्य हो, और पिता जो होता है कभी अपने बच्चे के जो अपराध है उनको गंभीरता से नहीं लेता है, इसलिए इसकी गलती को क्षमा कर दो, कोई बड़ी गलती नहीं की इसने और अब तो ये भक्त बन गया है, इसलिए अभी आप इसको स्वीकार करो। इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य ने अमोघ को फिर से स्वीकार कर लिया और अमोघ भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए। इससे हम देख सकते हैं कि जो भगवान के बहुत भक्तों के करीब आ जाता है भगवान की कृपा उसके ऊपर भी आ जाती है। जब अन्य वैष्णवों ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आपने ऐसा चमत्कार ऐसी असीम कृपा अमोघा के ऊपर क्यों की जबकि ये इतना द्वेषी आदमी है, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य मेरा अति प्रिय भक्त है और जो मेरे भक्त के लिए प्रिय होता है या जो मेरे भक्त से संबंधित होता है वो मेरे लिए भी प्रिय होता है। अगर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में कोई कुत्ता भी होता तो वो कुत्ता का भी उद्धार में कर देता क्योंकि वो सार्वभौम भट्टाचार्य का कुत्ता है, तो फिर उसके दामाद का उद्धार में कैसे नहीं करता। फिर सारे भक्तों ने महाप्रभु की बातें सुनी और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरह से अगर हमें हमारे भौतिक आसक्तियों से दूर होना है, इनको काटना अवस्था में लें, तो हमें भक्तों के संग में आना चाहिए, भक्तों के सामने अपने आप को बड़े नम्रता से पेश करना चाहिए, बिल्कुल बाहर का जो अहंकार है बाहर में। तो जब हम भगवान के सामने आते हैं, भगवान के मंदिर में भक्तों के साथ में आते हैं, तो हमारे केवल एक ही पद है, वो क्या है, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। कि हम केवल भगवान हम ऐसी भावना बनाए रखें तो ये अहमता और ममता की भावना से हम मुक्त हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति ये इस प्रकार के अपराध करता है, दसवां अपराध, उसे भी भक्तों के संग में आकर भगवान के नाम के बारे में बड़े श्रद्धा से सुनना चाहिए। फिर उसके हृदय के अंदर जो भी आसक्तियां हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। ये तो हुए दस नाम अपराध। लेकिन एक और है, आप जानते हैं वो क्या है? वो एक अपराध इन दस अपराधों में नहीं आता, लेकिन ये नाम अपराध बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये नाम अपराध करने से सारे अन्य अपराध हो जाते हैं। ये जो ग्यारहवां अपराध है ये अन्य दस अपराधों की जननी है, माता दूसरे दस अपराधों को जन्म देती है। और वो क्या है? ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। इससे नाना प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार से व्यक्ति मोहित हो जाता है। और जब व्यक्ति भगवान का नाम लेता है लेकिन ध्यान से नहीं लेता, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे से उसके मन में संसार की भोग की भावनाएं बढ़ जाती हैं। कभी कभी भक्त ये पूछते हैं प्रश्न कि हम इतने सालों से भगवान का नाम का जाप करते हैं और हम सुनते हैं कि शास्त्र में बताया है कि नाम का जाप करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, भोग की वृत्ति कम हो जाती है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि भोग की वृत्ति कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है? इसका कारण है कि हम ध्यान से जाप नहीं कर रहे हैं। और ध्यान से जाप नहीं करने की वजह से भोग वृत्ति बढ़ जाती है, नाना प्रकार की वासनाएं उमड़ आती हैं हमारे मन में और सूक्ष्म भोग की भावना भी बढ़ जाती हैं। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इसके पीछे भक्त भागने लगता है। अगर भी उसने स्थूल रूप से भोग करने की वृत्ति से विजय प्राप्त कर लिया हो, फिर भी सूक्ष्म भोग का शिकार बन जाता है। सूक्ष्म भोग मतलब क्या है? कि लोग आके मेरे पैर पड़ें, लोग मेरी प्रशंसा करें, समाज में मेरा बड़ा नाम हो जाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, तो ये भी सूक्ष्म भोग है। तो ऐसी भावनाएं व्यक्ति के मन में आ जाती हैं क्योंकि वो ध्यान से जाप नहीं करता है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ध्यान से जाप नहीं करना, इसको प्रमद कहते हैं। मद मतलब पागलपन, प्रमद मतलब प्रकृष्ट रूप, मतलब अति, जब पागलपन बढ़ जाता है तो उसको प्रमद कहते हैं। तो जब व्यक्ति ध्यान से जप नहीं करता है तो ये एक तरह का पागलपन है। ऐसा क्यों? इतने कठोर शब्द में क्यों इसे ऐसे बताया गया है? जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो स्वयं भगवान हमारे जिह्वा पे उपस्थित होते हैं। हम जब नाम लेते हैं तो हम भगवान से भगवान को निमंत्रण दे रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, नाम रूप में कृपया आप मेरे सामने प्रकट होइए। और जब भगवान प्रकट होते हैं नाम रूप में तो हम ध्यान नहीं देते, तो क्या ये पागलपन नहीं है? समझ लीजिए कि आपने आपके घर में प्रधानमंत्री को बुलाया है और प्रधानमंत्री सीधे दिल्ली से आपके घर में बेलगाम में आए विशेष हवाई जहाज में, और आपके घर पे छत पे वो हेलीकॉप्टर में आए, बेलगाम के हवाई अड्डे पर भी नहीं गए, सीधे आपके घर के छत पे आए हेलीकॉप्टर से और फिर आपके घर में आए। और जब वो आपके घर में आए तो आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आपके सामने हैं, दिल्ली से खास आपको मिलने आए हैं, और आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, किसी चौथे आदमी से बात कर रहे हैं, तो क्या ये पागलपन नहीं है? तो उसी तरह से जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान को हमने बुलाया है, आइए हमारे जिह्वा पे आप उपस्थित होइए। भगवान आ गए नाम रूप में और फिर हम ध्यान नहीं देते हैं भगवान के नाम को, कहते आपके लिए समय नहीं है, हमारा मन कहीं दूसरे विषय पे जाके मग्न हो चुका है कि मेरे व्यवसाय में क्या हो गया, मेरे घर में समस्या क्या हो गई, आज भोजन के लिए क्या है, नाना प्रकार की इच्छाएं या भावनाएं या विचार हमारे मन में आने लगती हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर इसको प्रमद कहते हैं। तो कहते हैं कि तीन प्रकार के प्रमद होते हैं। एक है औदासीन्य, मतलब हम जब भगवान का नाम लेते हैं उदासीन होकर, मतलब ज्यादा परवाह नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस लेने के लिए ले रहे हैं नाम। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे हृदय में कई तरह के भौतिक आसक्तियां रहती हैं, और जब हम भगवान का नाम जाप करना आरंभ करते हैं तो हमारा मन इन भौतिक आसक्तियों के प्रति आकृष्ट हो जाता है, और इसलिए भगवान के नाम के ऊपर हम ध्यान नहीं ले सकते। तो इसके लिए उपाय क्या है? उपाय है कि हम ऐसे वैष्णवों के संग में बैठकर हरि नाम लें, उनको देखें, उनका उदाहरण देखें कि वो कितने उत्साह से, कितने ध्यान से, कितने अच्छे तरह से जाप कर रहे हैं। तो उनका उदाहरण देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि चलो हम कितने हम कितने कम पड़ गए हैं ध्यान पूर्वक जाप करने में। देखो ये वैष्णव कितने अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक जाप कर रहे हैं, कितने उत्साह से कर रहे हैं, तो चलो हमें भी करना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे वैष्णवों के संग में आकर जब हम जप करेंगे तो हमारे जप में भी सुधार आ जाएगा। यह उदासीन भावना जो है, हम इसको इसके परे हो पाएंगे। इसलिए भक्तों को चाहिए कि जितना हो सके वो मंदिर में आके जाप करने का प्रयास करें। मंदिर में आके जाप करना और अपने घर में बैठ के जाप करना, इसमें बहुत अंतर हो जाता है। हाँ, ये संभव शायद नहीं हो कि हर भक्त हर दिन आए, परंतु जहां तक हो सके हफ्ते में दो दिन, हफ्ते में तीन दिन, भले एक घंटे भी क्यों न हो, हम भगवान के भक्तों के साथ में मंदिर में बैठकर अगर जाप करेंगे और उनका उदाहरण देखेंगे कि ये कितने अच्छे तरह से जाप कर रहे हैं अन्य भक्त, तो हमको प्रेरणा मिलेगी, फिर हम उदासीन वृत्ति को त्याग पाएंगे। दूसरा तरीका जिससे कि हम ध्यान पूर्वक जाप नहीं करते, या प्रमद का दूसरा एक भाग है जड्य। जड्य मतलब आलस। हमारी बुद्धि भी बहुत आलसी हो जाती है। जप करते हैं, आधा माला करते हैं, फिर सोचते अरे बहुत नींद आ रही है, जमाई आती है, फिर सोचते हैं चलो अभी नहीं, सो लेते हैं, फिर माला रख देते हैं, जाके सो जाते हैं। फिर इस तरह से क्या होता है कि हमारे मन में भी भगवान के नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो इससे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? हमें ऐसे वैष्णवों का संग करना चाहिए जो समय बर्बाद नहीं करते हैं, जो हर समय कुछ न कुछ भगवान की सेवा करते रहते हैं, जो प्रगल्प नहीं करते, इधर उधर की फिजूल की बातें नहीं करते हैं। ऐसे वैष्णव के साथ में अगर हम उठेंगे बैठेंगे, इनका संग लेंगे, तो फिर हमारे आलस से हम मुक्त हो सकते हैं। तीसरी बात है विक्षेप। विक्षेप मतलब मन हमारा इधर उधर भटकने लगता है। इसका भी अनुभव हम सबको है। हम भगवान का नाम का जाप तो कर रहे हैं लेकिन मन अमेरिका चले जाता है, वर्ल्ड कप क्रिकेट में चले जाता है जो कल हमने टेलीविजन में देखा था, और इस तरह से मन इधर उधर भागने लगता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि इससे दूर होने के लिए हमें बड़े ध्यान से इन भौतिक आकर्षणों को दूर करना चाहिए हमारे मन से, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए जो भी बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं भगवान के मंदिर में, उनमें हमें शामिल होने चाहिए। जैसे जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, रामनवमी है, इन सारे उत्सवों में भाग लेकर हमारे अंदर फिर से वो उत्साह आ सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी, जो भगवान के उत्सव होते हैं वो भक्ति की माता है, भक्ति की जननी है। इस तरह से हमारे हरि नाम के जाप में हम पुनः उत्साह जागृत करा सकते हैं। तो हम जब अगली बार भगवान का नाम का जाप करेंगे, हमें बड़े उत्साह से करना चाहिए। जब हम देखेंगे कि हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, ये तीन प्रकार के अलग अलग तरह से, चाहे औदासीन्य हो, जद्य हो, विक्षेप हो, तो हमें इन तीनों से हमें बच के रहना है, वैष्णव का आश्रय लेना है और भगवान का नाम लेते लेते भगवान के धाम में वापस जाने की तैयारी करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो क्या आपके कोई प्रश्न है?
सर मेरा प्रश्न है, ये स्पाइट ऑफ ऑल द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन इज स्टिल नॉट कंसंट्रेटिंग हिज माइंड टुवर्ड्स द हरे कृष्णा, विच आर द फिजिकल थिंग्स विच ऑलवेज डाइवर्ट हिम टुवर्ड्स द नॉट गेटिंग द गॉड ऑफ हरे कृष्णा एंड नॉट गेटिंग द पीस इन हिज माइंड? ऑल पीपल मोस्टली आर विदाउट पीस। प्लीज लेट मी टेल एंड एक्सप्लेन सो आई कैन ऑल्सो गेट द पीस। थैंक यू सर।
आपका प्रश्न है कि आजकल के जमाने में विज्ञान की इतनी प्रगति हुई है, फिर भी लोग अशांत हैं, तो ऐसे अवस्था में व्यक्ति को मन की शांति कैसे प्राप्त करनी चाहिए? इसके लिए रामबाण उपाय है, वह है भगवान के भक्तों के संग में आना। बस आदौ श्रद्धा तथा साधु संग स्यात् भजन क्रिया, भजन क्रिया में हमें लग जाना चाहिए भक्तों के संग में, फिर सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और कोई प्रश्न?
तो आपने उदाहरण दिया कि घर गंदा है तो कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन हमारे हृदय में सब काम खुद है तो भगवान कैसे आ सकते? फिर हम आह्वान किए तो भी नहीं आएंगे क्योंकि उधर सब गंदा है ना, फिर
इसलिए साफ करना चाहिए। और साफ करने के लिए ये भगवान ने हमको डिटर्जेंट पाउडर दिया है, ये सर्फ और निर्मा हमारे कपड़ों को धो सकते हैं, ये लक्स साबुन हमारे शरीर को धो सकता है, लेकिन अंदर जाके हृदय को क्या कौन सा साबुन धोएगा? ये है हरि नाम। हरि नाम लेने से हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर भगवान आके वहां निवास करेंगे। जिस हद तक हमारा हृदय स्वच्छ होगा, उस हद तक भगवान वहां आकर निवास करना पसंद करेंगे। ठीक है,
हरे कृष्ण। आपने बोला है कि नामस्मरण के समय समझो मन में भगवान की कुछ लीलाएं सामने ऐसा मन में आती है, दूसरा कुछ विग्रह है भगवान पांडुरंग जी की वगैरह, तो वो उनके ऊपर ध्यान होना चाहिए कि सिर्फ भगवान के नाम के ऊपर ही ध्यान होना चाहिए? समझो हम वो फोर्सफुली लाते नहीं है लेकिन आती है सामने, तो क्या हमने वो कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ नाम पे ही करना है, क्या वो आते हैं तो अच्छा है?
प्रभुपाद जी बताया करते थे कि हमारी पद्धति है नाम को सुनना, इसलिए हमारी सारी मानसिक शक्ति भगवान के नाम को सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। परंतु अगर भगवान का सुंदर रूप हमारे मन के आंखों के सामने आ भी जाए तो ये अच्छी ही बात है, परंतु कृत्रिम रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। एक न एक दिन स्वाभाविक रूप से भगवान का सुंदर रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी केवल नाम लेने से। नाम गुण रूप लीला, केवल भगवान का नाम लेने से भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाएं स्वतः प्रकट हो जाएंगी हमारे हृदय के भीतर। ठीक है, यहाँ चंद्रावली गोपी के बारे में पूछा है, कोई आज से प्रवचन से संबंधित कोई अगर प्रश्न हो तो अच्छा है।
प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
प्रभु जी, जप के प्रति उदासीनता का सही कारण क्या हो सकता है?
हमारी भौतिक आसक्तियाँ, हम बहुत चिंतित रहते हैं हमारी भौतिक आसक्तियों से, हमारे घर से, हमारे धन से, हमारे व्यवसाय से, हमारे शरीर से, तो ये सारी चीजें हमें उदासीन बनाती हैं। जब ये सारे भौतिक आसक्तियां होती हैं तो जप के समय हमारा मन उनकी ओर चले जाता है, आकर्षित हो जाता है उनकी ओर, इसलिए मन भटक जाता है भगवान के नाम से। ठीक है,
जैसा है गृहस्थ आश्रम की सारी जिम्मेदारियां और सब पत्नी बच्चों को सबको कैसे खुश करते हुए भी हम सत्संग में अपना लीन हो सकते हैं क्या? सबको खुश करने में दिक्कत हो रही है और अपना व्यवसाय व्यस्त चलाते हुए, अपना व्यवसाय नौकरी चलाते हुए भी हम किस तरह अपने आप को परफॉर्म करें, अपनी ड्यूटी किस तरह निभाएं, थोड़ा प्लीज हमको गाइड कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु,
कुटुंब को खुश रखने के लिए आपको कठिनाई हो रही है? आपको सुनकर थोड़ा बहुत शायद सांत्वना मिलेगी कि आप अकेले नहीं हैं, ये सारे दुनिया की समस्या है। आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसने सबको खुश रखा हो, संभव नहीं है ये। लेकिन तो फिर किया क्या सके, क्या करें हम? सारे कुटुंब को भगवान की भक्ति में लगाएं, बस यही सरल बात है। भगवान के हमारे कुटुंब के केंद्र बिंदु भगवान बन जाएं, तो हमारे जीवन की सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सब लोग अगर घर में भगवान के भक्त बने, भगवान का नाम संकीर्तन चलता गया घर में, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा चलती रही, भगवान की कथाएं होते रही, हमारे सारे कुटुंब के सदस्य मंदिर में आते रहे, तो फिर हमारा घर वैकुंठ बन जाएगा। और जो जिन समस्याओं की अनुभूति हम कर रहे हैं वो धीरे धीरे से मिट जाएंगी। कुटुंब अगर आपसे अलग है, कहीं दूर रहते हैं, तो वहां भी वो कर सकते हैं, वहां भी वो भक्ति कर सकते हैं। जब आप जाएंगे वहां उनसे मिलने, तो आप उनको उपदेश दे सकते हैं, दो अच्छी बातें भगवान के बारे में बता सकते हैं, उनको भी जाप की माला दे सकते हैं कि भाई आप सब भी करो, घर में भी आप भोग चढ़ाए बिना कुछ खाना नहीं। और इस तरह से जो भी आप भक्तों के संग में आकर सुनते हो, समझते हो, वो आप उनको समझा सकते हो, इस तरह से उन्हें भी भगवान कृष्ण के भक्ति मार्ग में आप लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे बीच में कई विशेष अतिथि आए हैं और इसलिए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि बंबई की श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से वहां हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।